कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था।
ओम शांति। आज हम सब के बीच उपस्थित हैं आदरणीय कविता दीदी जी, जिन्होंने हमारे और आदि रत्न के बीच एक कड़ी बनकर हम सबको इतनी पालना दी और इतने अच्छे से योग भट्टी कराया। ऐसी आदरणीय कविता दीदी जी का हम बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। तो आदरणीय कविता दीदी जी ज्ञान में बचपन से हैं और आप यूपी हमारे ही क्षेत्र या स्टेट यूपी मेरठ से हैं। आपने लौकिक पढ़ाई में एमए किया, पीएचडी की डिग्री लेते लेते आपको बाबा ने यज्ञ में समर्पित कराया। आप 1979 से यज्ञ में समर्पित हैं। आप एक कुशल संचालिका के रूप में भरतपुर में सेवारत हैं। भरतपुर और वहां के आसपास के अनेक सेवा केंद्र और सैकड़ों गीता पाठशाला के आप कुशल संचालिका हैं। आगरा जोन की संयुक्त जोन प्रभारी हैं। अनेक विंग्स जैसे महिला, युवा, मीडिया, प्रशासक, धार्मिक, सुरक्षा विंग्स की सेवा में पूरे भारत में आपने भ्रमण किया है। राष्ट्रीय, प्रांतीय स्तर पर और मुख्यालय पर भी आपने बहुत सेवाएं की है और आपकी विशेष रुचि अध्ययन और योग में है। आज दीदी जी का विषय है एक रस स्थिति में दिनचर्या का क्या महत्व है। आदरणीय दीदी जी से हम सभी सुनेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। बेहद मधुबन घर में आकर तपस्या भूमि, वरदान भूमि, परिवर्तन भूमि, स्मृतियों को समर्थ और साकार करने वाली भूमि में हम सब उपस्थित हैं और पिछले 3 दिन से हम ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि जो हम संकल्प कर रहे हैं वही संकल्पों का सुख, आनंद, रस आत्मा अनुभव करती जा रही है। ऐसा अनुभव कर रहे हैं? जो ऐसा अनुभव कर रहे हैं वो हाथ उठा के बताएं। थैंक यू। और ये भी चाहते हैं कि ये 3 दिन हमारे इस ब्राह्मण जीवन के अविस्मरणीय हो जाएं। सदा ही ऐसी अवस्था, ऐसी स्थिति, ऐसा रस, ऐसी शक्ति हमारे अंदर बनी रहे, ऐसी आप सबकी इच्छा है ना? है ना? तो उसके लिए हम देखेंगे कि मधुबन की अपना बल तप तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं यहाँ की दिनचर्या। यहाँ जैसे आप में और हम में सभी में एक ऑटो सिस्टम लगा हुआ है। हमारे आदरणीय जगदीश भ्राता जी कहते थे जैसी व्यवस्था वैसी अवस्था। तो यहाँ की जो दिनचर्या बनी हुई है, व्यवस्था बनी हुई है, उस व्यवस्था में आप स्वतः ही ढलते जा रहे हैं। प्रातः 3:30 बजे रिकॉर्ड लगेगा, उससे पहले आपकी आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि आपका बायोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली माइंड सेट हो गया है। माइंड को इन्फॉर्मेशन है, माइंड को सूचना है कि मुझे 3:30 बजे से पूर्व जगकर तैयार होकर प्यारे बाबा के रूम में जाना है। तो माइंड जो हमें बहुत अद्भुत शक्ति के रूप में प्राप्त हुआ है और वो भी डिवाइन माइंड हो गया है, तपस्या के बल से, आध्यात्म के बल से, वो हमारा माइंड हमें इस व्यवस्था में 3 बजे 3:15 बजे नेचुरल जागृत कर देता है। और जब 3:30 बजे का हम गीत सुनते हैं, अमृत वेला शुद्ध पवन है, बोलो, तो रोमांच हो जाता है कि मेरा आवाहन कोई कर रहा है, मेरी कोई प्रतीक्षा कर रहा है, मेरा कर्तव्य बोध मुझे आकर्षित कर रहा है। वो शब्द सुनते सुनते कहीं गुम हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, और वो प्रभु प्रेम में इतना आकर्षित हो जाते हैं कि जो निद्रा है, जिसे मेडिकल साइंस कहती है 8 घंटे चाहिए, 6 घंटे चाहिए, वो कहीं छूट जाती है और हम सज धज कर अपने परम उद्देश्य, परम कर्तव्य और परम प्राप्ति की ओर प्रभु की यादों में खो जाते हैं, समा जाते हैं, अर्थात अपने परम सुख में डूब जाते हैं। तो वो दिनचर्या जो हमने पिछले 3 दिन से मधुबन के अंदर अपने को स्वचालित पाया, कोई न कह रहा है, पहले दिन हमने दिनचर्या सुन ली, पहले दिन हमको रूल रेगुलेशन डायरेक्शन मिल गए, और उसके पश्चात हम ऑटो सजेशन, ऑटो सिस्टम से चलते जा रहे हैं और अनुभूति में खोए हुए हैं। ना हम जगकर थके, ना हम पढ़कर थके, ना हम बैठकर थके, ना हम दौड़कर थके, ना हम चुप रहकर थके, लेकिन क्या महसूस किया कि जिस शक्ति की मुझे जिस दिन से बाबा का बना था मुझे आवश्यकता थी, मेरी अंदर से जिज्ञासा थी, डिमांड थी कि मैं निरंतर योगी बनूं, अंदर से डिमांड थी कि एक समय मुझे ऐसा मिले, एक समय मेरे जीवन में ऐसा आए जो मैं एक रस, बाबा की मुरलियों का, ज्ञान का मनन करूं। तो क्या देख रहे हैं हम यहां आकर, क्लास और ग्लास, क्लास ग्लास, ग्लास रखा फिर क्लास में, क्लास छूटा फिर ग्लास में। तो जो बाबा ने कहा है उसको बाबा ने हर बच्चे के मन के संकल्प को पूरा कराया है। यही अनुभव है ना हम सबका कि कब कब टाइम निकल रहा है और मन कर रहा है योगी होने के कारण, पक्का सच्चा ब्राह्मण होने के कारण। आज प्यारे बाबा ने बताया पक्का सच्चा ब्राह्मण क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ उसका कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। तो पढ़ाई हम निरंतर कर रहे हैं, सुबह अमृत वेला बाबा की याद, फिर उसके बाद क्लास, मुरली क्लास, फिर क्लास, फिर क्लास, फिर क्लास, और उसके बीच में मनन चिंतन, क्योंकि जो सुनेंगे मनन तो होगा ही। तो जो मैंने बाबा को संकल्प दिया था दिल का, जो मैंने बाबा को अपनी इच्छा बताई थी कि कभी मुझे ऐसा मौका मिले जो मैं एक बार अपने इनर सॉफ्टवेयर को सेट कर लूं, अध्ययन अध्ययन अध्ययन। तो पिछले 3 दिन से हम क्या कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना। तो बाबा से आपने संकल्प दिया, बाबा को आपने कहा, और बाबा ने ये स्वर्णिम अवसर भवन भट्टी का हमको देकर हमारा पूरा करा दिया। किसने कराया, जिसने कराया बाबा ने कराया। तो ऐसे बाबा के प्यार में जो 3 दिन हमारी अवस्था एक रस रही है वो सदा बनी रहे, उसके लिए हमें वहां जाकर भी अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखना होगा, क्योंकि व्यवस्था और अवस्था एक सिक्के के दो पहलू हैं। जैसी आपकी आंतरिक सॉफ्टवेयर अपलोड किया हुआ होगा, यहां से ही आप अपने पुरुषार्थ का सिस्टम सेट कर लेंगे, तो वहां जाकर भी, कार्यक्षेत्र पर होते हुए भी, आप अपने पुरुषार्थ को यहां जैसा एक रस बना पाएंगे। उसके लिए हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना है, तो कुछ बातों को क्या करना होगा, जो काम की नहीं है और वो हमारे से जुड़ गई थी, उनको छोड़ देना है। कुछ फाइलें डिलीट करनी है आंतरिक सॉफ्टवेयर से, और कुछ फाइलों को अपलोड कर लेना है। रोज करते हैं ना फोन में हम डिलीट और अपलोड, तो वैसे ही हमें अपने मानसिक जगत में, वैसे ही अपने बुद्धि के स्तर पर, हमें अपनी वहां व्यवस्थित दिनचर्या को बनाए रखने के लिए प्यारे बाबा ने अनेक बार मुरलियों के माध्यम से संसार जगत में रहते हुए, घर परिवार में रहते हुए, कार्यक्षेत्र पर जाते हुए, विभिन्न संस्कार स्वभाव की आत्माओं के साथ जीवनचर्या जीते हुए हम अपने ध्येय में स्ट्रांग रहें, स्ट्रिक्ट रहें, अनुशासित रहें, संयमित रहें, ये हमें थोड़ा सा अटेंशन देना होगा। मैं याद कर रही थी उस मुरली को जिसमें बाबा ने कहा कि सुबह सुबह का अमृत वेला हम ब्राह्मणों के लिए ठीक इस प्रकार से है जैसे चिकित्सा जगत में चिकित्सक लोग कहते हैं कि खाली पेट रहना स्वास्थ्य के लिए हानि है, कुछ खा के रहो, खाली पेट ना रहो, अथवा कहते हैं नाश्ता राजा की तरह करो। ठीक इस प्रकार हमारे इस आध्यात्मिक जगत में सुबह सुबह का अमृत वेला हमारे ब्राह्मण जीवन की अवस्था को समृद्ध और शक्तिशाली बनाने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए, एक रस बनाने की नींव है। और सुबह का अमृत वेला, बाबा ने कहा है, सुबह का अमृत वेला करना माना मक्खन और मानी का खाना। जैसे मक्खन और मानी खा लें, रोटी पर मक्खन रखकर खा लें, तो पौष्टिक आहार होगा, विकसित होने वाले बच्चे का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। ठीक इस प्रकार यदि हम अमृत वेले, जो अमृत वेले की विधा बाबा ने बताई है, जाकर मुख हाथ धुलाई करके, अगरबत्ती जलाकर, घर में एक कमरा है, उस कमरे के कोने को भी हम योग का कक्ष बनाए, एक कुर्सी रखने बराबर जगह भी भले हो, लेकिन बिस्तर को छोड़कर, अगरबत्ती जलाकर, मुख हाथ अच्छी तरह धुलाकर, हम बाबा का आवाहन कर उस कोने में भी बैठते हैं, तो हम अनुभव करते हैं कि बाबा सर्व गुण, सर्व शक्तियां, सर्व खजाने लेकर अपने बालक जो आज्ञा पालक बनकर करता है उसकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, अर्थात उसे प्रातः काल का अमृत वेला, अर्थात आत्मा की शक्तिशाली होने के लिए। जैसे गांव में किसान जब खेत जोतने जाते थे तो खेत जोतने से पहले वो मिस्सी रोटी और मिस्सी रोटी पर मक्खन रखकर खाते थे और उससे वो चार घंटे हल जोतकर आते थे, वो शक्ति हमें उस अमृत वेले से प्राप्त होती है। तो वहां भी हमारा ये अमृत वेला साधारण ना हो, काम चलाऊ ना हो, नेमी नाथ वाला ना हो, बल्कि विधि से सिद्धि को प्राप्त करने वाला हो, ऐसा दृढ़ संकल्प हमारे मन के अंदर हो, हमारी स्थिति के अंदर धारणा हो जाए। जब आप यहां से जाएं तो बाबा को ये पत्र लिखकर जाएं कि अब तक हमारा अमृत वेला कैसा भी रहा, लेकिन अब जो बाबा ने मुझे पद्मा पदम सौभाग्यशाली बनाने के लिए जो ये भट्टी का स्वर्णिम अवसर दिया है, ये तपोभूमि, परिवर्तन भूमि और साकार यज्ञ मात पिता की कर्म भूमि में रहने का, पालना प्राप्त होने का जो बेला मिली है, इसका मुझे जीवन पर्यंत पूरा लाभ लेना है। जब ऐसा हमारे मन में भाव होगा तो आप देखेंगे कि मन की शक्ति बहुत ही चमत्कारी शक्ति है। जितना गहरा बीज विचार का आप बोएंगे, उतना ही आनंद सुख प्राप्ति आप अपने मन के द्वारा दिनचर्या में सफल रूप से कर पाएंगे। जाते जाते हमारे चंद्रशेखर भाई जी ने बताया तीन बातें ब्राह्मण जीवन की, पहला अमृत वेला, दूसरा मुरली। तो मुरली क्लास हमारी कब शुरू होती है? मुरली क्लास कब शुरू होती है? 6:30 बजे से क्या होता है? मुरली चलती है, योग चलता है, योग चलता है। बिल्कुल पास हो गए आप सारे भाई बहन, क्योंकि मुरली क्लास को कई लोग जब मुरली शुरू होती है उस समय से मानते हैं। लेकिन जो सच्चे ब्राह्मण है, जिसको आज बाबा ने याद किया मुरली में, जो पढ़ने और पढ़ाने वाले हैं, वो कभी भी मुरली को मुरली क्लास नहीं मानते, बल्कि मुरली से पहले जो योग होता है वो मुरली क्लास शुरुआत होती है। अर्थात जैसे अभी हमारा ओम शांति भवन में 6:30 से 7 योग चलता है, तो जैसे 7 बजे से मुरली सुनना कंपलसरी कोर्स है, वैसे ही 6:30 से 7 बजे तक योग करना भी कंपलसरी योग है। क्योंकि बाबा ने कहा अमृत वेले आपने मक्खन मानी खाई, तो तुरंत तो पानी नहीं पिएंगे ना, पानी तो थोड़ी देर बाद पिएंगे। तो मुरली क्लास से पहले का जो योग है वो आत्मा के लिए पानी जैसा है। जो मक्खन मानी आपने खाई है उसको डाइजेस्ट करने वाला है, तो वो पानी हमें अवश्य पीना है। ज्ञान मुरली सुनने से पहले अमृत वेला सघन साधना के पश्चात मुरली क्लास का योग अवश्य करना है। दौड़ दौड़ के मुरली के लिए तो हम जाते हैं, जैसे गाय का बच्चा दौड़ के दूध पीने के लिए भागता है, ठीक इस प्रकार हम ब्रह्मावत्स पक्के सच्चे ब्राह्मण बाबा के घर प्रातः मुरली क्लास के लिए चहुं दिशाओं से दौड़ते हैं। वो दृश्य बहुत सुंदर होता है, यहाँ भी हम देखते हैं तो भी फरिश्ते उड़ते आ रहे हैं और होल भरता जा रहा है। हाँ, तो रेड लाइट होने पर कुछ लोग होते हैं, पहला गीत चलने पर कुछ होते हैं और अधिक हो जाते हैं, और लास्ट के योग तक होल भर जाता है। तो वो लास्ट में पहुंचने वाली मैं आत्मा नहीं, बल्कि रेड लाइट होने से पहले मेरा प्रवेश और तेरे बैठते ही रेड लाइट होवे और मैं उस ज्ञान अमृत को योग के मुरली अमृत से पहले योग के अमृत का पान करूं, ऐसा मैं ध्यान रखूं तो मेरी अवस्था बहुत लगन वाली बनी रहती है। बाबा कहते उसके बाद सुनो वाणी, पहले मक्खन मानी, फिर योग का पानी, फिर सुनो बाबा की वाणी। वाणी माना आकाशवाणी, अमृत वाणी, हम सबको यह लोक से परलोक में ले जाने वाली वाणी। जब वाणी सुनते हैं तो कितनी प्लान बनती है अंदर में, मुखड़ा दिखता जाता है। कोई दिन ऐसा ना हो, हाँ सुना रहे थे ना हमारे एक वरिष्ठ भाई यहाँ क्लास में, बनारसी भाई जी ने सुनाया था, स्ट्रक्चर पर लेट कर भी जाना पड़े लेकिन मुरली क्लास हमको नहीं छोड़नी, क्योंकि हमारी मीठी मम्मा का कितना विशाल भयंकर रोग था, कितना बड़ा रोग था, लेकिन मम्मा ने कभी बाबा की आज्ञा को नाजी नहीं किया। क्या किया? हाजी। हमारी बाबा की आज्ञा हम बच्चों के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए, देवता बनने के लिए क्या है? एक ही आज्ञा है, और वो आज्ञा क्या है? मुरली का सुनना। सिर्फ सुनना नहीं, मनन करना, अवलोकन करना। और हम अवलोकन करते नहीं है, मनन करते नहीं है, मुरली सुनते सुनते स्वतः होता जाता है। आज बाबा ने कहा माता पिता शिक्षक सतगुरु सन्मुख है, तो योग में बैठ के हम क्या देख रहे हैं? बाबा को सामने देखते ही तीनों सामने हैं, एक में ही थ्री इन वन है। दादी हमारी निर्मल शांता दादी कहती थी मेरे थ्री इन वन है, लेकिन आज बाबा ने हम सब बच्चों का थ्री इन वन बना दिया। एक में ही माता पिता शिक्षक और सतगुरु सम्मुख बैठा है। अब ये स्मृति जब हमें रहेगी तो अवस्था कैसी रहेगी? बोलो, पीछे से बोलो भाई। एकरस रहेगी। बाबा का पूरा ज्ञान, बाबा ने कहा मेरे बच्चे ज्ञान में फुल पास हैं। हर रिक्त स्थान हर बच्चे से मुरली में भरवा लो। सुखधाम के प्रायवाची, स्वर्ग के प्रायवाची आप सबसे सुन लो। सब जानते हैं ना सुखधाम के कितने प्रायवाची हैं। नरक के प्रायवाची सुन लो, विलोम सुन लो। मुरली से कोई भी रिक्त स्थान भरवाने की बात आए तो कोई भी भाई बहन, इवन कोई भी माता, कितना भी कम पढ़ा हुआ भाई बहन होगा वो भी फेल नहीं होगा। सब याद है उसको, हर प्रश्न का उत्तर मीठा बाबा, मेरा बाबा, शिव बाबा है या नहीं? घूम घूम के वही बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझो, तो अगली लाइन हम बोल देते हैं मुझ बाप को रिक्त स्थान में फुल पास है। ज्ञान में हमारे सुप्रीम टीचर बाबा ने हर बच्चे को परफेक्ट बना दिया है। ज्ञान में तो हम पास हो गए, लेकिन कहां अटक गए? योग में भी पास हैं। बाबा ने कहा योगी माना, दादी सुना रहे थे कल, नाचना गाना और खुशी में रहना, ये योग है। तो बाबा बाबा करके बाबा की महिमा किसी को सुनानी हो तो कितने हम महिमा बाबा की सुनाते हैं, लेकिन रह गया निरंतर नहीं है, एक रस नहीं है उसमें। कभी बहुत ऊंची स्टेज है, कभी मध्य, कभी सहारे की आवश्यकता होती है, कोई संजीवनी हमें सुंगाए तो हम उठें। तो वो उस स्थिति से बचने के लिए बाबा के महावाक्य जब हम सुनते हैं तो अंदर अंदर चलता जाता है। आज बाबा ने ये कहा, मैंने बाबा को कहा था मुझे ये करना है, एक मास पहले मैंने बाबा को कहा था ये पुरुषार्थ मुझे करना है, मैंने कुछ दिन तो किया, फिर मैं तो भूल गया। फिर प्रेम से बाबा को कहते, बाबा मैं भूल गया, तो बाबा क्या कहता, कोई बात नहीं बच्चे, आज याद आ गया, आज मुरली चली तो आज की मुरली से समझ में आ गया, याद आ गया कि ये तुमने एक मास पहले मेरे से वायदा किया था कि मुझे अपनी अशरीरी अवस्था को बनाए रखना है, लेकिन मुझे देह भान की फीलिंग आई और फ्लू की बीमारी लगी और मैंने बाबा के दिए हुए समय संकल्प श्वास को एक रस अवस्था से कई रसों में बिता दिया। ऐसी गेम करते हैं ना हम ब्राह्मण, यही गेम है ना हमारे, ये खेल है हमारे। और उस खेल में कई तो बिल्कुल हतोत्साहित हो जाते हैं और कई एक धक्का अपने को लगाकर ठहर। मैं हमेशा भाई बहनों के सामने एक चित्र प्रस्तुत करती हूँ और अपने सामने भी रखती हूँ। एक छोटा बच्चे, छोटे छोटे बच्चे घर के बाहर खेल रहे होते हैं, जब एक बच्चा दो चार छोटे बच्चों से घिर जाता है और अपने को अकेला समझता है और सोचता है मैं इनसे जीत नहीं सकता हूँ, तो बच्चा क्या करता है? हाँ, घर की ओर भागता है, कहता है ठहर मम्मी को बुलाता हूँ। क्या कहता है? ठहर मम्मी को। अब उस छोटे बच्चे में इतना अकल है कि वो घिर गया, अब उसने क्षमता का अवलोकन उसने कर लिया कि इन चार के सामने मैं अकेला पड़ रहा हूँ और मैं अब इनसे जीत नहीं सकता, मैं हार जाऊंगा। उस एनालिसिस को वो इतना फास्ट कर लेता है और दौड़कर घर आता है और माँ से नहीं कहता है, क्योंकि माँ तो अल्टीमेट उसको ही डांटने वाली है कि तूने उनसे कुछ किया होगा गलत। तो वो क्या करता है, बस उनको धमकी देके, भभकी देके घर में घुसता है और घर में आके फिर बाहर जाके देखता है तो वो भी ठंडे पड़ गए होते। अर्थात हमारे मनोविकार, बड़े बड़े विकारों को हमने जीत लिया, लेकिन सबसे बड़ा विकार जो अब हमारे अंदर है वो है जो बाबा ने श्रीमत को जिस रूप में मुझे दिया है उसी रूप में मैं अपनी रूपांतरण कर लूं, उसकी कमी रह गई है। वही कमी से फिर चार बातें हमें, फ्लू आ जाता है, कमजोरी आ जाती है। हम उस छोटे बच्चे को याद करें, जैसे वो अपने को गिरता हुआ महसूस करता है तो घर भागता है। घर भागना माना, घर भागना माना। आज बाबा ने कितनी बार कहा, मैं परम धाम से आया हूं तुम्हारे सम्मुख। तो परम धाम जैसे ही हम पहुंचेंगे तो हम देह देह की दुनिया से डिटैच हो जाएंगे, उन व्यक्ति परिस्थिति बातों से उपराम हो जाएंगे। और उनको क्या बोलता जाता है, भागता जाता है बच्चा और क्या कहता है, ठहर ठहर मम्मी को बुलाता हूं। और जैसे ही घर के अंदर जाता है उसे तो कुछ मम्मी को कहना नहीं था, वो जैसे ही हम परम धाम गए तो सारी बातों से फ्री, बाबा से मुलाकात हुई, एक्स्ट्रा शक्ति जमा हुई, हेल्दी हैप्पी। वो अपने वो अलग, जैसे उस बच्चे के वो चारों जने वही दोस्त का भाव महसूस करते हैं और वो बच्चा भी अपने आप को हवलदार महसूस करता है कि मेरी तोप चल गई मम्मी की और घर की। अभी इसने एक ही कोई यूज किया था, मम्मी को कुछ यूज ही नहीं किया, अभी घर को ही यूज किया, उसमें ही मैटर सॉल्व हो गया। किया है ना हमने बचपन में ये खेल, अपने बचपन को याद करो। आजकल तो बच्चे वो खेल खेलते नहीं है, लेकिन आपने हमने तो वो खेल खेला है ना। घर के बाहर चार छह बच्चे मिलकर खेलते थे और जब ऐसा होता था तो हम ऐसे करते थे। उसको ही अब हमें अलौकिकता में परिवर्तित करना है, अर्थात बाबा की मुरली को सुनते समय मनन करना है कि क्या क्या बाबा ने आज मुझसे कहा और मैंने उसको कहां तक किया। जितना मैं वाणी को सुनते समय अपने को वाणी के तारों में झंकत कर लूंगी। हमारी मीठी मम्मा वीणा बजाते थे, गीत गाते थे, तो वीणा वाणी की वाणी को हम जितना अपने मन की सूक्ष्म चित्त की वृत्तियों के तारों में पिरो लेंगे उतना वो मुरली मुझे शब्दों से रटनी नहीं पड़ेगी, बल्कि वो मुरली घड़ी घड़ी मेरे मन के तार को बजाती रहेगी, मेरी बुद्धि को झंकृत करती रहेगी, मेरे कानों में मीठे बाबा की आवाज आती रहेगी। सिर्फ मुरली सुनना नहीं है, लेकिन मुरली के मंथन को, चिंतन को अपने चित्त से जोड़ना है। अब मधुबन की भांति तो हम वहां 24 आवर्स डायरी पेन लेके स्टडी नहीं कर सकते, तो क्या करना है। दिन भर प्यारे बाबा ने अपनी मुरली में हमें आज्ञा दी, दिन को बनो दानी। माताएं घर परिवार में रहती हैं, भाई कार्यक्षेत्र पर रहते हैं, आजकल तो मैंने भी हमारी कार्यक्षेत्र पर जाती हैं, तो कार्यक्षेत्र पर जाते समय भी हम ये लक्ष्य रखें कि मुझे अपने संकल्पों से, वाणी से, बोल से, कर्म से मुझे ज्ञान दान करना है। बोल से ही ज्ञान दान नहीं होता, बल्कि कर्मों से भी ज्ञान दान होता है। हमारे साथ कोई भी कर्मयोगी बनकर कार्य करेंगे तो कोई तो होंगे ना हमारे साथ, दफ्तर में, घर में, परिवार में कुछ तो लोग होंगे ना हमारे साथ, तो हमारा सदव्यवहार। अभी अभी हम सुन रहे थे कि बाबा का जीव जंतु पशु पंछी सब के प्रति ऐसा व्यवहार था हितकारी। जिसके कारण सांप भी क्या बन गया, रस्सी बन गया। चिड़िया भी आवाहन करते थे बाबा और उनकी हथेली से टोली खा जाती थी। तो होता है ना ये सब कुछ, लेकिन कब होता है, जब हम उस चीज के निर्माण का ध्यान रखते हैं। हमारे मन में सदैव जहां भी हम उपस्थित हैं हमारे वाइब्रेशन ये हो कि मुझे सबको सुख देना है, मैं सुखदेव बाप का सुखदेव बच्चा हूं, न दुख देना है न दुख लेना है, जल तत्व की तरह एडजस्टिंग पावर मेरे अंदर हो। तो जब हम ऐसा अटेंशन रखते हैं तो हम अपने बड़ों को भी सुख दे देते हैं, अपने समान साथियों को भी सुख दे देते हैं और अपने छोटे जो भाई बहन हैं उनको भी हम सुख देते हैं। और जो दोगे वो तो कर्म योगी बनने में आपका, कई बार हम कहते हैं ज्ञान तो कोई सुनता नहीं है, कई बार हम कहते हैं हम किसी को ज्ञान देते हैं तो वो लेते नहीं है, हंसी बनाते हैं, अथवा वो कहते हैं तुम करो हम तुमसे ले लेंगे, अथवा कहते हैं उन्हें ज्ञान नहीं चाहिए, लेकिन व्यवहार तो चाहिए, बोलो। और प्यारे बाबा ने हम सब घर परिवार में रहने वाले भाई बहनों के लिए सबसे बड़ा शास्त्र दिया है व्यवहार शास्त्र। आप देखिए अच्छे अच्छे वक्ता दुनिया में बहुत बैठे हुए हैं, लच्छेदार भाषा, बड़े चमत्कारी बुद्धि के बातें हम सबको दे देंगे, वो बहुत आकर्षित भी कर लेंगे हमें। लेकिन ये धारणाएं जो बाबा ने हम बच्चों को दी हैं वो उनके पास नहीं है, वो किनके पास है, वो आपके ही पास है। तो वो धारणा के धनी बन करके जब आप उनको वो देते हो तो उसका व्यवहार, आपके उस व्यवहार का प्रभाव उनके मन पर पड़ता है। तो क्या बनना है, दिन भर आपको दानी बनना है, संकल्पों से दान, शुभ भावनाओं से दान, उनकी कैसी भी क्रियाकलाप है उसमें मौका देखते ही उनको सहयोग का दान, क्योंकि योगी ही सहयोगी है। तो आपके उनके बीच में क्या हो जाएगी, पॉजिटिविटी की फ्रीक्वेंसी जमा हो जाएगी। चाहे सास नंद का रिश्ता है, चाहे सास बहू का रिश्ता है, चाहे नंद भाभी का रिश्ता है, चाहे सबॉर्डिनेट बॉस का रिश्ता है, सबके बीच में जब हम एक तरफा सद्व्यवहार, श्रीमत युक्त व्यवहार करते जाते हैं तो वापस में हमें वही मिलता जाता है। तो क्या बन गए हम दिन भर के लिए, दानी। सायंकाल होते होते क्या करो, महादानी। दान करते करते हम इतने अभ्यास में आ गए, इतने शक्तिशाली बन गए कि रात को सायंकाल की वेला में हम महादानी बन जाएं। उससे हमें क्या फायदा मिलेगा कि हमें योग करना है, हमें चिंतन करना है, हमारी नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल शांत हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी और हमारी सकारात्मक ऊर्जा, बाबा ने कहा मुझे करना है, बाबा ने बताया मुझे समझना है। पढ़ना भी कई प्रकार का है, सिर्फ मुरली ली और पढ़ी वो मुरली वो पढ़ना नहीं, अपने आप को बैठकर समझाना कि आत्मा राजा मन मंत्री को गाइड करे, आत्मा मालिक मन बालक को समझाए। अगर बालक कोई हरकत गलत करता है तो बड़े छोड़ देते हैं क्या उसको, या करने देते हैं उसको, या क्या करते हैं? छोटा बच्चा होता है आग को पकड़कर या इलेक्ट्रिक प्रेस को पकड़ लेता है तो क्या करती है माँ, पकड़ने देती है उसको, क्या टैक्ट अपनाती है? वो टैक्ट अपनाती है कि उसका ध्यान उस पर, वो प्रेस को तो छुड़वा नहीं सकती माँ उससे, क्योंकि बच्चे के अंदर इतनी ताकत होती है छीन नहीं सकती, छुड़ा नहीं सकती। तो माँ क्या करती है, इस बालक का माइंड डाइवर्ट करती है, उसको एक सुंदर सा खिलौना देती है, और जैसे वो सुंदर खिलौने में देखता है तो प्रेस को। तो ऐसे हमें अपने मन को बिठा कर समझाना होता है। बाबा सारी मुरली सुना के क्या कहते हैं, अच्छा समझा, कहते हैं ना, सुनते हैं ना रोज मुरली में, अच्छा अच्छा माना, सारी पॉजिटिविटी की एनर्जी बाबा ने हमारे अंदर उड़ेल दी, और फिर कहते हैं समझा। समझा माना, जब हम समझा, बाबा समझा कहते हैं और हम कहते हैं जी बाबा, तो जैसे सारी वो कार्य करने की क्षमता भी बाबा ने हमारे को विल कर दी। जब ऐसी बात को हम आत्मा बैठकर अपने मन को समझाती हैं, तो हमें बड़ी बड़ी बातें भी बहुत छोटी लगने लगती हैं। दिन भर दान करते करते करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। फिर हमारी डिक्शनरी में कोई खराब इंसान, कोई खराब आत्मा, कोई बदले की भावना वाला, कोई ईर्ष्या द्वेष वाला, कोई घृणा नफरत वाला, यही तो हमारी अवस्था को एक रस से कई रसों में बदलती है। वो आने बंद हो जाते हैं, डोर शट डाउन हो जाता है, और रह जाता है सबका भला हो सब सुख पाए। मुझे अच्छी तरह याद है, जो दफ्तर में जाने वाले भाई बहन थे, हमारे लौकिक भाई कुमार हैं, वो ज्ञान में चलते, उन्होंने ही हमें निकाला। तो उनका नियम होता था कि 5:30 के ट्रैफिक कंट्रोल से पहले वो ड्यूटी से आते थे और सीधा बाबा के रूम में जाते थे, क्योंकि दिन भर जो हमने किया उससे आजाद होने के लिए, उससे मुक्त होने के लिए, उसका रिपोर्टिंग कार्ड देने के लिए किसके पास जाना है। नियम था उनका कि 5:30 जब बजेगा, जब बाबा के रूम में हम पहुंच जाएंगे। जो दिन भर हमने अच्छा किया है, उस अच्छे का रिजल्ट क्या कि हम शक्तिशाली बनकर उस महाशक्ति में खो जाएं, समा जाएं। एकरस अवस्था को बनाए रखने के लिए हमारे दिन भर के ये ट्रैफिक कंट्रोल हैं। यहां तो आपके मोबाइल के ट्रैफिक कंट्रोल बंद करा दिए गए, लेकिन जब आप वहां जाएंगे कर्म क्षेत्र पर, तो वहां आपके ये ट्रैफिक कंट्रोल आज भी हम देखते हैं, एक एक गीत को मनन करते हैं, चाहे अमृत वेले का गीत लें, चाहे क्लास से पहले का 6:45 का गीत लें, चाहे 7:00 का लें, एक एक गीत ऐसा लगता है कि उस एक गीत पर एक थीसिस लिख दी जाए, इतना डेप्थ नॉलेज उसके अंदर समाई हुई है। मनन करते करते जैसे स्प्रिंग लग जाती है, जैसे बॉल को नीचे डाल फेंको तो बॉल क्या करती है, जंप करती है। गीत सुनते हैं तो धरती पर होते हैं, और सुनते सुनते स्वरूप बनकर कहां पहुंच जाते हैं, वतन और परम धाम में आत्मा पहुंच जाती है, और सब रसों के प्रभाव में ना आकर वो पुनः एक रस में स्थित हो जाती है। तो जानकारी हम सबको है, लेकिन अब हमको सिर्फ दृढ़ संकल्प की चाबी लगाकर इसको स्टोरेज करके पैक करना है। अब हमें अपनी अवस्था को, पेंडुलम को हिलने नहीं देना है, अपनी अवस्था के पेंडुलम को स्थिर रखना है। और बाबा ने कहा सायंकाल महादानी बन गए, अब रात को क्या बनना है, रात की रानी। क्या बनोगे, रात की रानी। सारे फूल दिन में खिलते हैं, लेकिन प्रकृति ने रात के लिए भी पुष्प दिया है, और वो पुष्प कौन सा है और उसकी खुशबू कैसी है। यहां दाएं बाएं तो कहीं है नहीं, पर खुशबू सबको आ रही है ना, उसकी आ रही है ना, कौन ले रहा है, वो हमारा अनुभव से मन बुद्धि के द्वारा हम उस खुशबू को ले रहे हैं। रात की रानी क्या करती है, रात जितनी होती जाती है वो महकती जाती है। अर्थात हमारी दिनचर्या जो श्रीमत प्रमाण संकल्प बोल कर्म हमारे चले उसके आधार से जब हम रात को सोएंगे तो स्वच्छ स्वस्थ प्रसन्न चित्त को लेकर बाबा को साथी बनाकर बाबा का बच्चा बनकर बाबा के साथ सोएंगे तो कैसे महकेंगे? जैसे रात को रानी रात की रानी का पुष्प महकता है तो आपकी महक कौन सी होगी? रूहानियत की महक होगी। कौन सी खुशबू होगी? आप में प्राकृत फूल की खुशबू नहीं होगी लेकिन आपकी खुशबू होगी रूहानियत की खुशबू। रूहानियत की खुशबू क्या है? हल्कापन, प्रसन्न चित्त, देव दर्शन होगा। कोई भी आपका नींद कैसी होगी? कुंभकर्ण वाली नींद नहीं होगी जो कल भैया ने कितने 10 पॉइंट कारण बताए निद्रा 10 प्रकार की कुंभकर्ण की निद्रा 7 प्रकार के निवारण बताए वो निद्रा नहीं होगी। फिर हमारी योगी की नींद कैसी होगी? हल्की नींद और फ्रेश नींद। हल्के भी होंगे और फ्रेश भी होंगे क्योंकि अब हम हमारी जो दिन भर का जो दिनचर्या थी उसका प्रभाव हमारी रात की चर्या पर भी पड़ रहा है जिसे कहते हैं अंतमति साहिब गति। वो तो जीवन का एंड होता है, ये दिन का चक्र है। जैसे काल चक्र हूबहू रिपीट होता है, सप्ताह का चक्र हूबहू रिपीट होता है, ऐसे दिनचर्या का चक्र भी 24 आवर्स में हूबहू रिपीट होता है। और उस हूबहू रिपीटेशन के लिए मुझे अपने माइंड के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके रखना है। एक बाबा दूसरा ना, सोच लो हम तो यही बोल रहे हैं, एक बाबा। आप सेंटेंस पूरा कर रहे हो और प्रैक्टिकल किसे पूरा करना है? प्रैक्टिकल किसे? बस 2-3 को बस पक्का। देख लो आएगी माया निकलती हा? पर अब हमने माया को कह देना है आओ खूब आओ। नीचे कर लो भैया, थैंक यू। माया आओ, माया को मने नहीं करना क्योंकि बाबा ने कहा माया मेरी बच्ची है, क्योंकि उससे भी हमें दुश्मनी का भाव नहीं रखना, वो भी हमारी मित्र है। क्योंकि जब हम बाबा की श्रीमत की पालना नहीं करते तो वो कराती है, इसलिए बाबा ने उसे बच्ची बताया, इसलिए बाबा ने हमारा उसे मित्र बनाया बताया। तो हमें उसको कहना आओ लेकिन साफ दीजिए। कोई गेट पे आते हैं ना, देखे दफ्तरों में भाई लोग देखते हैं ना, साफ अंदर इन आउट का बोर्ड लगा होता है। तो बाहर आते हैं बहुत से लोग तो साफ अंदर तो है पर वो क्या बताते हैं? बिजी है। तो माया आवे, माया को मना नहीं है क्योंकि वो भी 2500 साल हमारे साथ रही है, उसने ही हमें यहाँ तक पहुंचाया है और आज भी वो हमारी मददगार है। लेकिन वो हमें हमारी एक रस अवस्था को नीचे करने ना आए, वो हमारी अवस्था को बढ़ाने आए। कोई अगर हमारा पैर दाएं बाएं मन विचार इधर उधर होने वाला है उसको याद दिलाने आए तो ऐसा आना तो उसका अच्छा है ना, शुभ है ना। तो इसलिए प्यारे बाबा की एक अव्यक्त वाणी है ये, एक रस अवस्था बनाने के लिए दिनचर्या का महत्व। हाँ ऐसे तो पोयम के रूप में है, 5 पॉइंट में है। सुबह सुबह जगो तो खाओ मक्खन मानी, ये है अमृत वेले का योग। फिर क्लास से पहले का योग है मक्खन मानी के ऊपर पानी। फिर सुनो बाबा की वाणी, फिर दिन को बनो दानी। तो वो हमारा जो प्रेशर है बना रहेगा ना, और सायंकाल बनो आदानी। ये जब 5:30 से 7:30 का जो टाइम है कहां भी रहो लेकिन कोशिश करके ये ध्यान दो कि मुझे बाबा का सपूत बच्चा बनकर ब्राह्मण जीवन का परम कर्तव्य निभाने के लिए नुमा शाम का योग अवश्य करना है। उसे सारे देवी देवता सृष्टि पर चक्कर लगाते हैं और चक्कर लगाकर जिनको जो चाहिए बाबा उनके द्वारा मनुष्य आत्माओं को दिलाते हैं। तो देवी देवता तो सारे आप हैं कि कोई और है देवी देवता, तो आपके थ्रू दिलाएंगे ना। और आप कब दे पाएंगे, जब आप एंगेजमेंट सिर्फ एंगेज रिसीवर उतारेंगे, फ्री होके बैठेंगे, बाबा से लेंगे, सबको देंगे, तो महादानी बनेंगे ना। सकाश की सेवा, मुझे आत्मा का रोल रहा है, मुझे बाबा की बहुत अव्यक्त पालना, सकाश की पालना मिली है, तो मैं कई बार बाबा को उलहना देती थी, बाबा अब नहीं होता क्या ऐसा, जो अब आत्माएं ऐसे निकल के आई आपकी अव्यक्ति पालना से। तो जब यहाँ मधुबन में साढ़े छह से साढ़े आठ बजे तक योग चलता है, तो हम तब हम वही इमर्ज करते हैं। जैसे कल शशि दीदी बता रहे थे ना इस मेडिटेशन हॉल के लिए, कि ये पहाड़ी थी और बाबा इस पर तपस्या करते थे। तो आपकी तपस्या का बल अनेक आत्माओं को, जो आपने दिन भर में सदव्यवहार किया, दिन भर में श्रीमत प्रमाण आत्माभिमानी होकर के कार्य किया, अपनी अवस्था को एकरस बनाने के लिए जो तरीके और युक्तियों को आपने अपनाया, विधि को अपनाया, उसका फल क्या होगा कि उनका जो हृदय आपने जीता हुआ है व्यवहार से, उन पर आपके पवित्र प्रकंपनों का प्रभाव जाएगा और आप उनके इष्ट देव देवी बनकर उनको कोई ना कोई गुड फीलिंग, अव्यक्ति पालना, सकाश की सेवा के निमित्त बन जाएंगे। और जब आपकी एक वहां आप इस प्रकार की दिनचर्या बनाकर देखो, तो आप स्वयं भी शक्तिशाली महायोगी तपस्वी है ही, अपने अंदर वो आत्मविश्वास जो यहां से अभी चंद्रशेखर भाई कह रहे थे, दुकान से सैंपल खरीदा है आपने 3 दिन में, अब इसको कायम करना है, तो वो माहौल आपको मदद भी करेगा इस खजाने को सेफ रखने की। जिसमें जितना खजाना होता है, ट्रैवलिंग में जाता है तो उसका केयर करता है ना, जितना रिस्क जहां होता है वहां और ज्यादा अलर्ट होकर के उस खजाने को केयर करता है। ठीक इस प्रकार वो वातावरण जो आज हमें दिख रहा है कि यहां तो करना आसान है और वहां करना मुश्किल है, वो मुश्किल ही चुनौती ही हमें चैलेंज चांसलर बनाएगी और चांसलर से हम अपने आप को चेंज कर लेंगे। तो ऐसा हमारी शुभकामना है, हमारी आदरणीय सुरेंद्र दीदी ने, हमारी आदरणीय दादी दीदियों ने जो हमें ये एक स्वर्णिम मौका दिया है, उस स्वर्णिम मौका डायमंड मौके में बदल जाए, सदा हमारी एकरस स्थिति रहे, जैसे यहाँ आप चमक रहे हैं, खुश हो रहे हैं, हल्के हैं, प्रसन्न चित्त हैं, बुद्धि बाबा में है, ऐसी ही सदा बनी रहे, यही हमारे अलौकिक जीवन का सार है। ओम शांति।
ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स आदरणीय कविता दीदी जी को। आप सभी भी एक हाथ की ताली बजा के दीदी जी को ये भरोसा दीजिए कि आपने जो हमें ट्रेनिंग दी दिनचर्या को बनाने के लिए, एकरस स्थिति कैसे बन सकती है ना, उसके लिए हम पूरी तरह भरोसा दिलाते हैं। जब भी दोबारा हम मिले आपसे तो हम बिल्कुल सेट मिले, अपसेट ना मिले, क्योंकि दिनचर्या में बहुत सारी बातें आती हैं, हम डिस्टर्ब करते हैं या डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन आज दीदी जी ने जो विधि बताई ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, कारगर है, तो हम ऐसे ही सदा बने रहेंगे। बहुत बहुत थैंक्स आदरणीय दीदी जी को। ओम शांति।